जय राधामाधव कुंज बिहारी
जय राधामाधव कुंज बिहारी
गोपी जन वल्लभ गिरिवर
श्री रंग क्षेत्र आईला कावेरी रति
वह स्थान जहाँ रंगनाथ मंदिर स्थित है। आईना आए कावेरी रा कावेरी नदी के तीरा तट श्रीरंग देखिया। श्रीरंग मंदिर देखने के बाद प्रेमे भगवत प्रेमे हैला हो गए अस्थिर अस्थिर विवाद अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कावेरी के तट पर स्थित श्रीरंग क्षेत्र में आए तो उन्होंने श्रीरंगनाथ मंदिर के दर्शन किए और वहां पर वे भगवत प्रेम के आनंद में विवल हो गए। तो इसी कवर्णन मध्य लीला के नवे अध्याय में भी आया है, जिसमें श्रील प्रभुपाद ने श्रीरंगम के बारे में विशाल ये बड़ा तात्पर्य दिया है। तो वो श्लोक पढ़कर हम वहां का तात्पर्य पढ़ेंगे। पापनाशने विष्णु कैल दर्शन श्रीरंग क्षेत्र तवे करिला गमन। शिव क्षेत्र नामक तीर्थ देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु पापनाशन आए, जहां उन्होंने भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन किए। अंत में वे श्रीरंग क्षेत्र पहुंचे। तो इस श्लोक का तात्पर्य है, पापनाशन नाम के दो तीर्थ स्थान है। एक कुंभकोणम से 8 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है और दूसरा तिरुनवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के निकट तिरुनवेली पालम कोटा शहर से 20 मील पश्चिम में है। श्रीरंग क्षेत्र श्रीरंगम अत्यंत प्रसिद्ध स्थान है। ये तिरुचिरापल्ली जिले के कुंभकोणम के पश्चिम में लगभग 10 मील दूर और तिरुचिरापल्ली शहर के निकट कावेरी नदी के एक द्वीप में स्थित है। श्रीरंगम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है और ये 7 पर्वतों से घिरा है। श्रीरंगम तक 7 मार्ग भी जाते हैं। इनके प्राचीन नाम है धर्म मार्ग, राज महेंद्र मार्ग, कुलशेखर मार्ग, अली नाडन मार्ग, तिरुविक्रम मार्ग, माड़मणि गाइस का तिरुमिणी मार्ग तथा अड़ियावल इंदान मार्ग। इस मंदिर की स्थापना धर्मवर्मा के राज्यकाल से भी पूर्व की गई थी। ये राजा महेंद्र राज महेंद्र से भी पहले राजा करता था। श्रीरंगा मंदिर के में कई विख्यात राजा रह चुके हैं। राजा कुलशेखर, यमुनाचार्य अर्थात आलमदारो, यमुनाचार्य श्री रामानुज, सुदर्शनाचार्य तथा अन्य ने भी इस मंदिर की देखभाल की है। लक्ष्मी के अवतार बुद्धा देवी यांडाल 12 अलवरों में से एक थी। अलवर मुक्त पुरुष थे और दिव्य सूरी कहलाते थे। उनका विवाह श्रीरंगनाथ के अर्च विग्रह से हुआ था। बाद में भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो गई। कार्मों के अवतार तिरुमंगा अलवरों में से एक ने चोरी से कुछ धन प्राप्त करके श्रीरंगम की चौथी 4 दीवारी बनवाई दी। कहा जाता है कि 290 कली संवत्सर में तोंडर टिप्पणी नामक अलवर का जन्म हुआ। जब वे भक्ति में लगे थे तो एक वेश्या के जाल में फंस गए। अपने भक्तों को इतना पतित हुआ देखकर श्रीरंगनाथ ने अपने नौकर के हाथ उस वेश्या के पास एक सोने का थाल भेजा। जब मंदिर में सोने का थाल की खोज की गई तो वो वेश्या के घर में पाया गया। जब भक्त ने उस वेश्या पर रंगनाथ की कृपा देखी तो उसकी भूल सुधर ली गई। तब उसने रंगनाथ मंदिर की तीसरी 4 दीवारी बनवाई और वहां पर तुलसी का बगीचा लगा दिया। रामानुजाचार्य का एक विख्यात शिष्य पुरेश था। इनका पुत्र राम पिल्लाई था, जिसका पुत्र वाग विजय भट्ट हुआ, जिसका पुत्र वेदव्यास भट्ट या श्री सुदर्शनाचार्य हुए। जब सुदर्शनाचार्य बूढ़े हो गए तो मुसलमानों ने रंगनाथ के मंदिर पर हमला कर दिया। लगभग 1200 श्री वैष्णव को मार डाला। उस समय रंगनाथ के अर्च विग्रह को विजयनगर राज्य के तिरुपति मंदिर में ले जाया गया। गिंगी के गवर्नर गोपनार्य ने श्रीरंगनाथ को तिरुपति मंदिर के सिंह ब्रह्म नामक स्थान में ले आए, जहां वे 3 वर्ष तक रहे। 1293 शक संवत में अर्च विग्रह को पुनः रंगनाथ मंदिर में स्थापित कर दिया गया। रंगनाथ मंदिर की पूर्व दीवार में वेदांत देशिक द्वारा लिखित एक लेख है, जिसमें बताया गया है किस प्रकार रंगनाथ इस मंदिर में वापस आए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो हम चैतन्य चरितामृत में श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे हैं। संक्षिप्त रूप में कृष्णदास कविराज उस यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। तो आज के श्लोक में कृष्णदास कविराज श्रीरंगनाथ का वर्णन करते हैं। श्रीरंग देखिया श्रीरंग क्षेत्र आयला कावेरी तीर, श्रीरंग देखिया प्रेमे हैला अस्थिर। तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास के बाद जगन्नाथपुरी गए थे, और जगन्नाथपुरी जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु कुछ दिन तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी संन्यास के उपरांत जब गए तो उन्होंने जगन्नाथ का दर्शन किया और सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार आदि किया। फिर अचानक चैतन्य महाप्रभु के मन में एक विचार उमड़ उठा। चैतन्य महाप्रभु ने एक बहाना बनाया दक्षिण भारत की यात्रा में जाने का। तो जाने से पूर्व चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, जिन भक्तों के साथ वो जगन्नाथपुरी आए थे, जगदानंद और दामोदर पंडित, मुकुंद, नित्यानंद प्रभु, हाँ, तो उनको अपने पास बुलाते हैं एक दिन और उनसे निवेदन या याचना करते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि महाप्रभु ने उन भक्तों को कहा, निजगन आनी कहे विनय करिया, आलिंगन करी सबाय श्री हस्ते धरिया, तो मां सबा जानिया भी प्राणादिक करी, प्राण छाड़ा जाए तो मां सबा छाड़े देना पारी। उन्होंने कहा कि आप जो भक्त जो आप मुझे जगन्नाथपुरी ले आए हो, मैं आप सबसे बहुत विनम्रता पूर्वक ये निवेदन करता हूं, और बल्कि महाप्रभु ने उन भक्तों का आलिंगन किया, उनके हाथ अपने हाथ में पकड़े और कहा कि आप जो भक्त हैं वो मुझे अपने प्राण से भी अधिक प्रिय है, प्राण छाड़ा जाए तो मां सबा छाड़े देना पारे। ये वैष्णव संग के लिए आसक्ति होनी चाहिए एक भक्त के हृदय में कि मेरा प्राण चला जाए लेकिन जो वैष्णव भक्तों का संग है, वैष्णव समाज से मैं दूर नहीं जाना चाहता। तो महाप्रभु उनको कहते हैं, तोमा सभा जाने अभी प्राणादिक करी, हे वैष्णवगण आप मुझे अपने प्राण से भी अधिक प्रिय है, मैं आप सबको छोड़ना मेरे लिए असंभव है। फिर महाप्रभु उनको कहते हैं, तुम्हें सब बंधु और बंधु कृत्य कैले, यहाँ आने मोरे जगन्नाथ दिखाई ले। महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में आप मेरे असली हितेशी हैं, आप मेरे असली बंधु हैं। क्या बंधुत्व का क्या कार्य किया है आपने कि आप मुझे जगन्नाथपुरी ले आए हो और यहाँ लाकर आपने जगन्नाथ को दिखाया है, ये सर्वोत्कृष्ट कार्य आपने मेरे लिए किया है। मागो एक दाने, सभी मेरी आज्ञा दे चाहे दक्षिणे। तो मैं अभी आपका ये जो ऋण है वो चुका नहीं सकता कि आप मुझे जगन्नाथ का दर्शन करने लाए हो अपने साथ, लेकिन फिर भी मैं क्या एक निवेदन करता हूँ आपके चरणों में कि आप मुझे एक दान दे दो। वो दान क्या है कि आप मुझे परमिशन दो कि मैं दक्षिण गमन करूं, दक्षिण भारत में चला जाओ, विश्वरूप उद्देश्य अवश्य आमे जाव। एकाकी जाइव काहो संग नालय। उन्होंने कहा कि मैं दक्षिण भारत क्यों जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं विश्वलोक, उन्होंने सन्यास ग्रहण किया नवद्वीप में, और सन्यास के बाद हम कभी मिले नहीं, और मैंने भी कुछ सालों के बाद खुद सन्यास लिया है, तो मैं आप उनसे मिलना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने कहा मैं अकेले दक्षिण भारत जाना चाहता हूँ और किसी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। मैं कहां तक जाऊंगा? सेतु बंदर तक जाऊंगा, रामेश्वरम तक जाऊंगा, और वहां से वापस आ जाऊंगा। आप सब लोग मेरा इंतजार करते रहोगे जगन्नाथपुरी में। तो महाप्रभु का ये बहाना था। कृष्णदास कविराज कहते हैं चैतन्य महाप्रभु तो जानते थे कि उनके जो बड़े भ्राता है विश्वरूप है वो इस जगत से अप्रकट हो गए हैं, लेकिन दक्षिण देश उद्धारित करे न यही छल। दक्षिण भारत का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ये क्या कर रहे थे, एक प्रकार का छल कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जाने के लिए तत्पर थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी सारे वैष्णव का परमिशन लिया यथावत, और जब सार्व भट्टाचार्य के पास गए और सार्व भट्टाचार्य ने सुना कि अरे श्री चैतन्य अभी अभी आए हैं और मेरे जैसे कौवे को उन्होंने गरुड़ बना दिया है, मैं इतना एक प्रकार से अधम व्यक्ति था, उन्होंने इतना बड़ा भक्त मुझे बना दिया है गरुड़ के समान, और उनके संग से अभी मुझे दूर होना होगा, तो सार्व भट्टाचार्य को उनका विरह सहा नहीं जा रहा था। तो सार्व भट्टाचार्य ने कहा नहीं, जैसे उनको ये सुना एक प्रकार से मूर्छित हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आओ, तीन दिन रहो कम से कम। तो महाप्रभु ने सारा अपना योजना जो प्लान था वो कैंसिल किया, तीन दिन के लिए रहे और उनके घर में प्रसाद आदि ग्रहण किया। फिर सार्व भट्टाचार्य ने कहा आप तो यात्रा में जा रहे हो, लग रहा है आपके पास कपड़ों की कमी है, वस्त्र नहीं है, आप तो सन्यासी हो। तो सार्व भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को तीन ड्रेस जो वस्त्र है, तीन सेट जो वस्त्र है वो प्रदान करते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के सारे भक्तों का परमिशन लेकर अपने दक्षिण भारत की यात्रा शुरू करते हैं। तो महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से बाहर निकले हैं दक्षिण जाने के लिए, तो अलारनाथ एक स्थान है जहां वो चल पड़े, तो वहां तक जगन्नाथपुरी के सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के संग में निकले। तो वहां गए तो बहुत सारे ग्रामवासी, बहुत सारे जो लोग हैं चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए एकत्रित हो गए। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चलते नहीं थे। महाप्रभु क्या करते थे, जैसे ब्रह्म संहिता में वैकुंठ का वर्णन ब्रह्मा जी करते तो कहते हैं कथा गानम, वैकुंठ में बोलता व्यक्ति है तो वो गाता है, वह बोलना नहीं है। कथा गानम नाट्यम गमन अपि वंशी प्रिय सखी, कि वहां चलना चलना नहीं है, वहां नृत्य करते हुए चलते हैं। मतलब इतना अधिक आनंद भरा हुआ है वैकुंठ वातावरण में। ऐसे वैकुंठ के स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए और दक्षिण भारत की यात्रा पैदल करने निकले तो महाप्रभु नाचते हुए जा रहे थे। हाँ, प्रभुपाद ने कृष्ण बुक के इंट्रोडक्शन में जो प्रभु महाप्रभु गाते थे दक्षिण भारत में उसको लिखा है, कृष्णा 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 है। हाँ, तो वो तीन चार लाइन चैतन्य महाप्रभु गाते थे और हरि नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे थे, और महाप्रभु का जो सौंदर्य है चैतन्य महाप्रभु ने कई प्रकार से दक्षिण भारत के लोगों का उद्धार किया। एक तो हरि नाम के द्वारा, दूसरा चैतन्य महाप्रभु का जो सुंदर देह कांति है, सौंदर्य है, हाँ, और उनका जो देह है आभूषणों से सज्जित था। कृष्णदास कविराज कहते कि सन्यासी क्या आभूषण पहनेगा, महाप्रभु के आभूषण थे उनके पुलक आश्रु कंप स्वेद, हाँ, और उनका जो सैफ्रॉन वस्त्र है ये उनके आभूषण थे। इनको देखने मात्र से दक्षिण भारत के जो जीव है वो आकृष्ट हो जाते थे, और महाप्रभु को देखकर सबकी जीवा कृष्ण कृष्ण कहने के लिए लालायित होती थी, या कृष्ण कृष्ण कहे उठते थे। तो ऐसे महाप्रभु जब निकल पड़े तो सारे लोग अचंभित हो गए चैतन्य महाप्रभु को देखकर। केह नाचे केह गाय श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमेते वासी ललोक श्री वृद्ध आवाज। महाप्रभु को देखकर कोई नाच रहा है, गा रहा है, कोई गोपाल का उच्चारण कर रहा है, कोई गोविंद का नाम ले रहा है, बच्चे बूढ़े स्त्रियां सब लोग चैतन्य महाप्रभु की प्रेममय बाढ़ में बह रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने जब ये देखा कि अभी अभी एंट्री ओडिशा को छोड़ ही रहे थे तो अभी हो रहा है, तो नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की और वही भविष्यवाणी श्रील प्रभुपाद के लिए लागू होती है। नित्यानंद प्रभु ने कहा, देखि नित्यानंद प्रभु कहे भाग भक्त गने, यही रूपे नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। जैसे हम कहते ना, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई वे मोरना। पृथ्वी के नगर नगर और ग्राम ग्राम में महाप्रभु ने कहा मेरे नाम का प्रचार होगा। तो नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से पहले ही बोल दिया था, जब ये दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकले तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने कहा यही रूपे नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। ये जो हो रहा है ना अभी जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी से अभी बाहर निकलने वाले हैं, तो इसी प्रकार का नृत्य गान आदि हाँ विश्व के हर गांव गांव में होगा, कोने कोने में होगा। तो नित्यानंद प्रभु ने जगन्नाथपुरी में पहले से ही ये भविष्यवाणी की थी। और चैतन्य महाप्रभु फिर हम देखते हैं दक्षिण भारत भ्रमण करते करते वहां से कुरुक्षेत्र जाते सिंहाचलम राजमुंद्री और फिर अहोबिलम, फिर तिरुपति हमने सुना था पिछली क्लास में, अहोबिलम नरसिम्हा के बारे में सुना था। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आगे भ्रमण करते करते अहोबिलम नरसिम्हा का दर्शन करते हैं और उसके बाद हाँ कहाँ पहुंचते हैं, श्री रंगम में पहुंचते हैं। कावेरी ते स्नान करे देखी रंगनाथ, स्तुति प्रणति करे मानिला कृतार्थ। तो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में कहा है कि रंगनाथ में आए हैं, श्री रंग क्षेत्र में आए हैं। प्रेमावेश कैला बहुत गान नर्तान, देखी चमत्कार हैला सब लोकेर मान। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब श्रीरंगम में प्रवेश किया तो महाप्रभु सबसे पहले कावेरी में जाकर स्नान करते हैं और वहां जब महाप्रभु रंगनाथ मंदिर के सामने जाते हैं, जो सबसे विशाल मंदिर है और वास्तव में बहुत ही विशाल है, जब वहां महाप्रभु गए और चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य करना शुरू किया, कृष्ण कीर्तन करना शुरू किया, तो सारे जो श्रीरंगम के लोग हैं लाखों लाखों लोग वहां आ गए और चैतन्य महाप्रभु के संग में नृत्य करने लगे, गाने लगे, कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। तो आज के श्लोक में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि भगवान श्री चैतन्य ने रंगनाथ का दर्शन किया और जैसे रंगनाथ का दर्शन किया चैतन्य महाप्रभु विवल हो उठे, हाँ भावावेश में एक प्रकार से अस्थिर हो गए। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में रंगनाथ के लिए प्रेम था। इसी प्रकार का वर्णन कृष्णदास कविराज अलग अलग स्थानों में करते हैं। ये तो रंगनाथ को देखकर प्रेम से पागल हो गए, फिर महाप्रभु जब मध्वाचार्य के स्थान में उडुपी में गए थे तो वहां भी ऐसे हुआ था। उडुपी ते कृष्ण देखी है न देव्योन्मादी, जब उडुपी में गए जहां उडुपी कृष्ण है छोटे से विग्रह है उनको देखा तो वहां भी चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त हो गए। और महाप्रभु जब पहली बार जगन्नाथपुरी आकर जगन्नाथ को भी उन्होंने देखा था, जगन्नाथ आलंगिते चलिला धाइया मंदिरे पड़िला प्रेमे आविस्तहाइया। तो जब जगन्नाथ को भी उन्होंने पहली बार देखा तो इसी प्रकार के जो भावावेश हैं, हम बल्कि जगन्नाथ को देखकर वो तो अल्टर में बैठे थे भगवान और चैतन्य महाप्रभु दौड़ रहे थे, गए अल्टर के सामने, लगा के ऐसे जप लगा के मैं क्या करूं जगन्नाथ का आलिंगन करूं, लेकिन जप लगाने वाले हैं तो इतना प्रेम उनके हृदय में जाग उठा कि वो विवल होकर मूर्छित होकर वहां गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जिन जिन स्थानों में गए वहां वहां महाप्रभु ने उन स्थानों में तीर्थ स्थलियों का दर्शन किया। कृष्णदास कविराज कहते हैं दक्षिण भारत के महाप्रभु इतने स्थानों में गए कि मैं अलग से ग्रंथ लिखूं तो वो चैतन्य चरितमृत से बड़ा हो जाएगा, केवल महाप्रभु की दक्षिण यात्रा का यदि मैं वर्णन करूं। तो वो कहते हैं कि मैं प्रमुख प्रमुख स्थानों का वर्णन कर रहा हूं जिसके द्वारा समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने कितने सारे स्थानों का दर्शन किया होगा। तो महाप्रभु का एक ही उद्देश्य था दक्षिण भारत की यात्रा में कि जो दक्षिण भारत वासी हैं उनका उद्धार करना। तो जैसे हमने पहले भी श्रीरंगम से पहले भी तिरुपति के बारे में सुना था, तो मैं सोच रहा था श्रीरंगम जो रंगनाथ के जो विग्रह है या श्रीरंगम जो धाम है उसके बारे में कुछ समय के लिए हम श्रवण कर सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी वर्णन किया था कि श्री संप्रदाय में चार प्रमुख स्थान है, चार प्रमुख धाम है, श्रीरंगम है, तिरुपति है, कांचीपुरम है और तिरुनारायणपुरम मेल्लकोट्टे मैसूर के पास। तो ये श्री संप्रदाय के प्रमुख स्थान है, जिस प्रकार से गौड़ियों के लिए है वृंदावन मायापुर और जगन्नाथपुरी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे भी तीन स्थान है, मेरा ऑफिस कहाँ है मुंबई, मेरा घर कहाँ है वृंदावन और मेरा वर्शिपिंग जो प्लेस है अल्टर डेटी वर्शिप कहाँ करता हूं मैं मायापुर। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य और प्रभुपाद में बहुत साम्यता है, क्योंकि मध्वाचार्य के लाइन में होने के बावजूद भी मध्वाचार्य डिफरेंट स्टाइल के आचार्य थे। उनका स्टाइल क्या था, मध्वाचार्य बड़े बड़े लोगों को पकड़ के भक्त बना लेते थे, ब्राह्मण और राजा महाराजा जमींदार बस मध्वाचार्य ने इनको पकड़ पकड़ के भक्त बना दिया। लेकिन रामानुजाचार्य ने जो सबसे अधिक अदम है पति जीव है उनको भक्त बना दिया, जैसे हेमाम है, धनुर्दास और बहुत सारे ऐसे जिनका वर्णन आता है, म्लेच्छ यवन आदि। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने भी जो म्लेच्छ है यवन है गिरे हुए है उन सबको भक्त बना दिया है। तो ये दोनों आचार्य में एक साम्यता है, इसलिए इन दोनों को कहा जाता है पतित पावन। हाँ, प्रभुपाद को भी हम कहते हैं पतित पावन। तो वैसे श्री संप्रदाय के वैष्णव का रामानुजाचार्य को कहते हैं कि पतित पावन है। तो ऐसे ये जो चार स्थान है इनको फिर से मैं रिपीट करता हूं। श्रीरंगम जिसकी प्रमुखता क्या है, भोग मंडल, जिसको कहते हैं भोग मंडल का मतलब है कि जहां रंगनाथ स्वामी केवल भोग करना जानते हैं, इनके लिए वो श्लोक लागू होता है, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। ये गीता का श्लोक वास्तव में आचार्य अगर कहते हैं कि ये तो रंगनाथ के लिए है, क्योंकि रंगनाथ स्वामी भगवान रंगनाथ जो जिनको प्रसन्न करना बहुत ही टफ है और वो इतने सारे वो अपने भक्तों को इतने सारे स्ट्रगल में डाल देते हैं कि उसको पूरी तरह से शुद्ध नहीं करेंगे, उसके समर्पण आदि को चेक नहीं करेंगे तब तक अपना जो पूर्ण शेल्टर है वो प्रदान नहीं करते हैं। मतलब जो श्रीरंगम क्षेत्र है वो जीव के भोग के लिए नहीं है, वहां जो भी इस भोग की भावना से लालसा से रहता है तो वो वास्तव में भगवान के नजदीक पहुंच नहीं सकता। वहां जाकर एक ही चीज की शिक्षा वो प्राप्त करता है कि हे कृष्ण आप प्रभु हो और मैं कौन हूं दास। इस भावना को अनुभव करना जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। एक्चुअली श्री संप्रदाय में और ये गौड़िया संप्रदाय में कोई विशेष अंतर नहीं है, ये गौड़िया संप्रदाय की जितनी भी टीचिंग है 90% श्री संप्रदाय की है, लेकिन इसमें एक ही एक्स्ट्रा चीज है जो देने के लिए महाप्रभु श्री चैतन्य दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे और वो क्या था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रेम नाम संकीर्तन जो गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन जो चैतन्य महाप्रभु अपने साथ लेकर आए थे, जो श्री संप्रदाय में नहीं है, क्योंकि श्री संप्रदाय की सारी चीजें हम फॉलो करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जब दीक्षा सेरेमनी कैसी होनी चाहिए, डेटी वर्शिप कैसे होना चाहिए ये जाकर श्रीरंगम में सीखा और वहां जाकर ये इनिशिएशन सेरेमनी संन्यास सेरेमनी ये सारी चीजें इस संप्रदाय में प्रॉपरली वैष्णव विधि के अनुसार इंट्रोड्यूस की। और जो भी हम वर्शिप करते पूजा करते हैं विग्रह की पंचरात्र विधि वो भी इसी संप्रदाय से फॉलो करते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम जो टीचिंग है या मैक्सिमम चीजें वो वास्तव में श्री संप्रदाय से बहुत अधिक मिलती जुलती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वहां जाते हैं और वहां जाकर रंगनाथ का दर्शन करते हैं। तो इनका जो दूसरा स्थान है तिरुपति, जिसके बारे में हमने पिछली बार चर्चा की थी, जिसको कहते हैं पुष्प मंडल या पुष्प मंडपम, मतलब जहां भगवान को फ्लावर ऑफर करना ही सर्वोच्च सेवा है। उनको फूल ऑफर करने से बालाजी इतने अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, वो अपने आप को उस भक्त को दे देते हैं। और तीसरा स्थान है कांचीपुरम, जहां श्रीपद रामानुजाचार्य ने अपना अधिकतर समय बिताया वरदराज की सेवा करने के लिए। वरदराज बहुत विशाल विग्रह है और ऐसे वरदराज का मंदिर जो वरदान देते हैं अपने ऐसे किए हुए है और उसमें लिखा हुआ है मा शुचम। क्या लिखा हुआ है? हाँ, गीता का श्लोक, गर्वमत हाँ मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो वरदराज जो वर देने में सर्वश्रेष्ठ है, तो वह त्याग मंडल का मतलब है कि वरदराज आपकी सारी आसक्तियों को हटा देते हैं। हाँ, त्याग किए बिना आप वरदराज के नजदीक उस स्थान में नहीं निवास कर सकते। हाँ, मतलब जैसे रामानुजाचार्य को भी अपना सब कुछ त्यागना पड़ा, अपनी पत्नी त्यागनी पड़ी, सब कुछ त्याग के उनको वरदराज की सेवा में लगना पड़ा। और फिर आखिरी जो स्थान है जिसको कहते हैं तिरुनारायणपुरम, जैसे मैसूर के पास है मैलकोटे, जहां जिसको कहते हैं विद्यामंडल श्री संप्रदाय में। विद्यामंडल मतलब जहां ये जो रामानुजाचार्य थे उन्होंने श्री भाष्य की रचना की थी, और कोई व्यक्ति तीन स्थानों में भी नहीं जा पाता, लेकिन तिरुनारायणपुरम में जाता है, वन नाइट स्टे करता है और रामानुजाचार्य ने जो श्री भाष्य लिखा है उसको यदि पढ़ता है या फिर नहीं पढ़ पाता, उसके शुरुआत के पांच श्लोक यदि पढ़ता है तो वो सारे शास्त्रों के निचोड़ या सार समझ जाता है और कृष्ण को सरलता से अपने जीवन में धारण कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जो चार स्थान है श्री वैष्णव को बहुत अधिक प्रिय है, विशेष रूप से श्रीपाद रामानुजाचार्य को। तो ये रंगनाथ जो क्षेत्र है, श्रील प्रभुपाद जो भक्ति सिद्धांत सरत भक्तिनोद ठाकुर को किसी ने पूछा कि आप बताइए कि ये जो श्री संप्रदाय है उसके साथ हमारे संप्रदाय का क्या कनेक्शन है? तो भक्तिनोद ठाकुर ने कहा चैतन्य महाप्रभु प्रेमेर मंदिर रामानुज संप्रदाय भक्ति स्वरूप। वो कहते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु एक प्रेम का मंदिर उन्होंने स्थापित किया है, मंदिर के ऊपर के वो फ्लैग और शिखर है, लेकिन वास्तव में जो नीम है और जो दीवारें आदि है वो क्या है? स्त्री संप्रदाय है, हमारे संप्रदाय की। एक प्रकार से भक्तिनोद ठाकुर कहते थे, इसलिए भक्तिनोद ठाकुर ने जो श्री संप्रदाय के आचार्य है यमुनाचार्य, उन्होंने एक स्तोत्र लिखा जिसका नाम था स्तोत्र रत्न। मतलब जो भी व्यक्ति उस स्तोत्र रत्न को पढ़ेगा वो भगवान रंगनाथ के प्रति आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकता, इतना पावरफुल था। और वो इसलिए उन्होंने रचना की कि ये स्तोत्र को मैं लिख रहा हूं और यदि रामानुजाचार्य कांचीपुरम में रह रहे हैं, यदि वो इसको एक बार सुनेंगे तो दौड़ के कांचीपुरम को त्याग कर कहां पहुंचेंगे? श्रीरंगम में रंगनाथ का सेवा करने के लिए। और वैसे ही हुआ, उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा महापूर्ण को, और रामानुजाचार्य की सेवा क्या थी मंदिर में, 2 किलोमीटर दूर एक कुआ था जिससे घड़ा या बाल्टी भर भर के पानी लाना और वरदराज की सेवा में देना, यही दिन भर सेवा थी रामानुजाचार्य की। और वो पानी ला ही रहे थे तो इनके एक सेवक महापूर्ण जो आगे चलकर उनके गुरु हुए हैं, वो स्तोत्र रत्न को जोर जोर से पढ़ने लगे उनको देखकर कि उनको सुनाई देना चाहिए। जैसे इस श्लोकों को पढ़ा तो बिल्कुल भावावेश में आ गए रामानुजाचार्य और कहा कि किसने लिखा है, किसने लिखा है।
और जिस भगवान का वर्णन किया जा रहा है वो कहां निवास करते हैं, कौन है? तो उन्होंने कहा ये श्री रंगनाथ का वर्णन है। तो फिर रामानुजाचार्य हम बाद में हम जानते हैं कि किस प्रकार से श्रीरंगम चाहते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि ये जो रंगनाथ क्षेत्र है या इसको श्रीरंगम भी कहा जाता है या रंग क्षेत्र भी कहा जाता है, जहां भगवान निवास करते हैं, कैसे अपने अनंत शेष पर लेटे हुए हैं, अनंत शेष पर, और वो कोई चतुर्भुज विष्णु नहीं है। हमारे आचार्य कहते हैं कि जो रंगनाथ है अनंत शेष पर लेटे होंगे, लेकिन फिर भी वो वास्तव में कृष्ण है। तो ऐसे रंगनाथ का जो प्राकट्य है वो इस सृष्टि का सबसे पहला विग्रह है। तो जब हम सुनते हैं शास्त्रों में कि ब्रह्मा का जन्म हुआ था और ब्रह्मा को भगवान ने अपना दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित किया था, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा का नाम आदि कवि है, तो ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने सारा अपना जो ज्ञान है वो प्रकाशित किया था। और कालांतर में क्या हुआ, कुछ समय के बाद जो आसुर थे मधु और कैटर, उन्होंने उनके ज्ञान को हर लिया, चुरा लिया। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं हयग्रीव या हयशीर्ष के रूप में, और फिर से ब्रह्मा बहुत दुखी हो गए थे, रो रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, ज्ञान विहीन हो गया हूं। तो फिर ब्रह्मा जब बहुत चिंता में थे, दुखी थे, तो भगवान हयग्रीव के रूप में आते हैं। हयग्रीव, ग्रीवा का मतलब है गर्दन, हय का मतलब घोड़ा, तो घोड़े के जो गर्दन के रूप में भगवान अवतरित होते हैं हयग्रीव, और उनका जो ज्ञान है फिर इसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, अनइंस्टॉल किया था किसने, मधु गैंडो जो आसुर थे, जब ये इंस्टॉल कर दिया भगवान ने सारा ज्ञान, तो ज्ञान तो इनके पास आ गया था, लेकिन ये इंफॉर्मेशन था एक प्रकार से, लेकिन कोई रियलाइजेशन नहीं था, उस ज्ञान का कोई अनुभव नहीं था, ज्ञान का कोई साक्षात्कार नहीं था। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तपस्या करने लगे क्षीर सागर के तट पर, और भगवान को कहा कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे मार्गदर्शन या मार्गदर्शन करिए। तो भगवान क्षीर सागर से इस विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, रंगनाथ, सृष्टि के सबसे पहले विग्रह। शास्त्र कहते हैं कि वर्ल्ड में या सृष्टि में जितने भी विग्रह हम पूजा करते हैं, इनके सारे क्या है, विस्तार है, सारे विग्रह इस मूल विग्रह से हम प्रकट होते हैं। तो जब ये भगवान प्रकट हुए हैं रंगनाथ के रूप में और क्षीर सागर के तट पर, जो पूर्ण रूपेण शालिग्राम शिला से बने हुए थे, जो भगवान अनंत शेष के ऊपर सोए थे, और उनके पास तकिया भी था, कौन सी तकिया थी, अपने हाथ की जो राइट हैंड है भगवान ने तकिया के रूप में रखा है, और वो अनंत शेष के ऊपर सो रहे हैं और देख कहां रहे हैं, साउथ की ओर देख रहे हैं, साउथ मतलब दक्षिण की ओर देख रहे हैं, हाँ दक्षिण की ओर देख रहे हैं, और उनके चरण पूरब की ओर है, और अपने मुंह से हंसते जा रहे हैं और सो रहे हैं, दोनों चीजें साथ साथ हो रही है, सो भी रहे और हंस भी रहे हैं, और अपना जो हाथ है उन्होंने घुटने की ओर ऐसे रखा है, जिससे वो इंडिकेट करना चाहते हैं कि आप सारे जीव क्या करो, मेरे जो चरण कमल है ना, जैसे हम सोते तो हाथ नीचे करते हैं, तो एक प्रकार से इंडिकेशन कर रहे भगवान कि ये जो मेरे नीचे चरण है इनकी आप शरण ग्रहण करो। तो वैसे जो श्री संप्रदाय है उसमें सर्वोत्कृष्ट जो प्राप्ति है, जैसे हमारे संप्रदाय में है कि माधुर्य का प्राप्ति, माधुर्य रस, उन्नत उज्ज्वल रस, तो वैसे श्री संप्रदाय में भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करना और पूर्ण रूपे में भगवत चरणों की सेवा करना ये सर्वोत्कृष्ट डेस्टिनेशन है, टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन शास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार से जब ये विग्रह प्रकट हुए तो ब्रह्मा उनकी पूजा करने लगे, और ब्रह्मा सत्यलोक में उन्होंने टेम्पल बनाया, उनकी पूजा करने लगे, सारे अलग अलग लोगों के जो जीव है उनकी पूजा करते रहते थे। तो भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा तुम ध्यान से सुनो। तो भगवान ने उस रंगनाथ ने उस डेटी फॉर्म में जो भगवान थे उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा को 5 रात्रि तक ज्ञान दिया, दिव्य ज्ञान। अब विशेष रूप से भगवान के जो 5 स्वरूप हैं उनका वर्णन आदि किया। भगवान ने कहा मैं जो ज्ञान दे रहा हूं ब्रह्मा, ये ना वेदों में है ना उपनिषदों में है, तो तुम क्या करो, इस ज्ञान के द्वारा तुम मेरी पूजा करो। उस ज्ञान को क्या कहा जाता है, पंचरात्र। जैसे आप कहते हैं ना दो विधियां हैं, पंचरात्र विधि और दूसरी कौन सी है, भागवत विधि। ये जो श्रवण कीर्तन करना, जप आदि करना, संकीर्तन करना, ये भागवत विधि है। और पंचरात्र विधि क्या है, विग्रह की आराधना आदि करना, विग्रह की सेवा आदि करना। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि के विधि बिना एकांत किर हरेर भक्ति उत्पाते व कल्पते। यदि कोई व्यक्ति श्रुति स्मृति पंचरात्र आदि के अनुसार भगवत भक्ति नहीं करता तो वो क्या है उसका भजन, वो अपने जीवन में उत्पात खड़ा करेगा और दूसरों के जीवन में भी उत्पात मचाएगा। तो इसलिए इन शास्त्रों का आधार होकर भगवत भक्ति हम व्यक्ति को करनी चाहिए। तो भगवान ने ये 5 रात्रि तक ब्रह्मा को ज्ञान दिया जिसे पंचरात्र कहा गया। और हमारे संप्रदाय में भी फेमस पंचरात्र है, कौन सा है, नारद पंचरात्र। फिर नारद को भी आगे चलकर ये 5 रात्रियों में ज्ञान मिला इसी पंचरात्र का, जिनका हम पालन करते हैं। तो ऐसे फिर इस ज्ञान के आधार पर ब्रह्मा ने रंगनाथ की सेवा की और फिर उन्होंने सृष्टि की रचना शुरू की। सारे पंच महाभूत जितनी भी चीजें उन्होंने क्रिएट की, इसलिए क्रिएशन किया कि इन सारे चीजों का इस्तेमाल भगवान की सेवा में होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा ना यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। ये भौतिक जगत हमारे भोग के लिए नहीं बनाया, ब्रह्मा ने किसके किसके भोग के लिए बनाया है, भगवान कृष्ण के भोग के लिए। सारे जो पंच महाभूत और उनके जो परिवर्तित रूप आदि है वस्तुएं हैं, वो सारे भगवान के एंजॉयमेंट के लिए है, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए है। तो इस प्रकार से उन सारी चीजों के साथ उन्होंने भगवत सेवा की, रंगनाथ की सेवा की। और ऐसे नहीं कि वो विशाल विग्रह प्रकट हुए थे, उनके साथ उत्सव विग्रह भी प्रकट हुए थे, जिनको कहा जाता था नम्म पेरुमल। नम्म का मतलब होता है जैसे वहां कहते नम्म कृष्ण, नम्म कृष्ण इज माय कृष्ण, तमिलनाडु में कहते मेरे कृष्ण। तो उस प्रकार से ये जो उत्सव विग्रह है वो भी उनके साथ उनका प्राकट्य हुआ था और ब्रह्मा ने उनकी सेवा करना शुरू की। इसलिए कहते हैं कि अर्च विग्रह की सेवा ये बहुत पावरफुल है हर एक व्यक्ति के लिए। इसलिए कोई व्यक्ति स्त्री संप्रदाय में है तो उसको एक चीज जरूर पता होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर देता है तो समझना चाहिए वो कहां से दीक्षित है, स्त्री संप्रदाय से। कोई पूछे कि आप बताओ कृष्ण के जो 5 स्वरूप है उनको एक्सप्लेन करो, उनको बताओ, यदि कोई व्यक्ति कर पाता है तो उसको कहते हैं कि हाँ ये श्री वैष्णव है। यदि हमें पूछा जाए गौड़िया वैष्णव के लिए पूछा जाए कि आपके आराध्य कौन है और किसका किसका आधार है आपके भगवत भजन के लिए और सर्वोत्कृष्ट धाम आपका कौन सा है, इन सब चीजों के लिए हम आंसर नहीं दे पाते तो हम गौड़िया वैष्णव नहीं है। इसलिए महाप्रभु के लिए कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तन धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता। तो ये एक श्लोक जो महाप्रभु ने दिया है इसमें हमारे संप्रदाय का सारी फिलॉसफी है, सब कुछ है। यदि ये हमें पता नहीं है तो हम वास्तव में गौड़िया वैष्णव नहीं है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, कोई पूछे आपके आराधनीय कौन है, सोचते रह जाएंगे किसका भजन कर रहा हूं मुझे पता नहीं, किसके नाम का जप कर रहा हूं, क्यों आ रहा हूं, क्यों भगवतम सुन रहा हूं, क्यों चैतन्य चरिता क्लासेस हो रही है। तो आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, आराध्य भगवान कृष्ण है, लेकिन कौन से कृष्णा? ब्रज ईश तनया, ब्रज वृंदावन ईश में जो स्वामी है, स्वामी कौन है? नंद महाराज है, उनके तनय, तनय कौन है? कृष्ण है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम, जितने आराधनीय मेरे कृष्ण है उतने ही आराधनीय उनका धाम है। तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गे न मा कल्पित। फिर कोई पूछे कि प्रोसेस क्या है आपकी, तो जी प्रोसेस को बताइए, कौन से प्रोसेस से आप भगवान का भजन करते हैं? प्रोसेस सोचते रह जाएंगे। वहां कहते हैं वहां रम्या काचित उपासना, जो सरेंडर, जो समर्पण, जो सेवा की भावना, रम्या जो रमणिया है, ब्रज वधुया है, ब्रज बालाए है, वृंदावन के जो भक्त है, वो जिस भावना से भगवत सेवा कर रहे हैं समर्पण आदि से, उस भावना से हमारे प्रोसेस है भगवत भजन या भगवत सेवा करने की। और उसका आधार क्या है? कोई पूछेगा बिना ऐसे अपने मन से तो नहीं कर रहे हो, आधार क्या है? श्रीमद् भागवतम, वहां कहा गया है कि भागवतम इसका आधार है। ये किसका मत है? श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्र दराना परा, ये महाप्रभु का मत है। तो इस प्रकार से हमारे लिए ये अंडरस्टैंडिंग आवश्यक है। उसी प्रकार से श्री संप्रदाय में कोई पूछता है पांच फॉर्म, तो उसको बताना होगा पहला भगवान का स्वरूप क्या है। पहला है परा, परा का मतलब है कि कृष्ण जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में निवास करते हैं उनका जो ओरिजिनल स्वरूप है, वही कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं तो भगवान का दूसरा फॉर्म है, जिसको टेक्निकल भाषा में कृष्ण कविराज ने चैतन्य चरितामृत में दिया है आदि लीला में। तो दूसरा फॉर्म क्या है? व्यू। व्यू का मतलब है कि भगवान कृष्ण से जो अलग अलग चतुर्व्यू निकलते हैं, हम सुनते हैं ना संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव, अनिरुद्ध आदि, हाँ, तो ये सारे, ये सब मूल रूप से वैकुंठ जगत या आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं। और तीसरा स्वरूप है पुरुष, पुरुष अवतार। कितने पुरुष अवतार है? तीन, गर्भोदकशायी, कारणोदकशायी और क्षीर उदकशायी। तो इस प्रकार से ये पुरुष जो क्या करते हैं? भौतिक जगत आदि का क्रिएशन करते हैं। और चौथा है अंतर्यामी। तो सारी चीजें क्रिएट हो भी जाए मैटर, लेकिन भगवान उसके अंदर अंतर्यामी परमात्मा रूप से प्रवेश ना करे तो कोई भी चीजें चलायमान नहीं हो सकती। इवन हमारा आत्मा भी शरीर में रहे, परमात्मा नहीं रहे, तो भी हम चलायमान नहीं हो सकते। परमात्मा निकलते आत्मा को जाना पड़ता है शरीर को छोड़कर। तो इस प्रकार से चार, और पांचवी चीज क्या है? भगवत स्वरूप। पांचवा है अर्चा। अर्चा मीन्स अर्चा अवतार, भगवान अर्चा या विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। हाँ, कोई कहे कि ऊपर वाले ठीक है, हम तो ये आहार निद्रा भय मैत्र में लगे रहे, भगवान तो ना हमें परा रूप में दिखाई देते हैं, ना व्यू रूप में, ना पुरुष, ना चौथा क्या था? अंतर्यामी। करेंगे किसका सेवा, किसका भजन? तो भगवान वही क्या करते हैं? हाँ, अर्च अवतार के रूप में आते हैं। तो जीव की जो सेवा की भावना है, भोग की भावना को सेवा की भावना में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए अर्च विग्रह का होना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो जो विग्रह है उनकी सेवा उनके मूड के अनुसार करनी चाहिए। और वो मूड हमें कहां से प्राप्त होता है? आचार्यों के द्वारा। अभी आप जगन्नाथ को आप पिज्जा खिलाते रहोगे और फिर क्या है नूडल्स खिलाते रहोगे, उनको क्या खाना अच्छा लगता है? राइस। अभी आप तिरुपति बालाजी के वहां जाओगे और तिरुपति बालाजी को आप कुछ और खिलाते रहोगे, बालाजी को प्रिय क्या है? पोंगल। क्या प्रिय है? पोंगल राइस, वो पोंगल खाते हैं। अभी नॉर्थ इंडियन का उनको क्या है यहाँ फेमस क्या है? मक्के की रोटी और सरसों का साग या खड़े चावल, राजमा चावल, वो छोले भटूरे। यहाँ के नाम में ही पैशन भरा पड़ा है। ये नाम देखो, नाम मधुर नहीं लगते, छोले भटूरे। अपने आप में रजोगुण है, लेकिन नामों में रजोगुण है, खाएंगे तो क्या होगा, रजोगुण की वृद्धि होगी। लेकिन वहां देखो पोंगल कितना मधुर है, साउथ इंडियन डिश का। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि भगवत अर्चा विग्रह के मूल आदि के अनुसार उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए, जानना चाहिए कि विग्रहों को क्या अच्छा लगता है। यह नहीं कि हमें कोई परे टेंशन ही नहीं रहता, आ गए ना जो बना वो खिलाते रहो। हम मुक्ति, भगवत सेवा से मुक्ति प्राप्त कर लो। हाँ, तो प्रेम की भावना नहीं है। तो यहां रंगनाथ की सेवा के लिए सब लोग अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। तो जब ब्रह्मा इनकी पूजा कर रहे थे तो उन्होंने आगे चलकर सूर्य देव को ये विग्रह दिए, उन्होंने पूजा शुरू की, फिर विवस्वान इक्ष्वाकु मनु, और फिर उन्होंने आगे चलकर ये किसको दिए, भगवान राम दशरथ आदि को। तो ये रंगनाथ के इतने विशाल विग्रह पहले अयोध्या में थे, भगवान राम अपने महल में उनकी पूजा आदि करते थे। लेकिन जब रावण का वध किया और विभीषण आदि के साथ जब अयोध्या आए तो वह प्राइज गिविंग सेरेमनी था, बंदरों को बहुत सारी चीजें बांटी। जब विभीषण का समय आया, विभीषण ने कहा आप चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। तो उन्होंने कहा, भगवान राम ने कहा, मैं मुझमें और ये मेरे जो विग्रह रंगनाथ, इनमें कोई अंतर नहीं है। विभीषण को विग्रह भगवान राम ने दिए, विभीषण उठा के ले जा रहे थे, बहुत खुश थे, लंका पहुंच जाऊंगा। लेकिन बीच में इधर से वो थे ना, गोवर्धन को उठा के लेके आए थे, कौन से मुनि थे, पुलस्त्य मुनि। लेकिन गोवर्धन को कहां रुकना था, ब्रज वृंदावन में रुकना था। तो उसी प्रकार से रंगनाथ को लेकर विभीषण जब आए तो कावेरी के ऊपर से जा रहे थे, बल्कि कावेरी ने पहले से तपस्या की थी, वो एक बहुत विशाल लीला है। तो कावेरी ने कहा था कि आप मेरे तट पर निवास कीजिए, कावेरी भगवान की बहुत प्रिय है। तो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा खड़े मत रहना, क्योंकि खड़े रहोगे तो तुम दौड़ते हो, भागते हो, लेटे रहो कैसे रहो, जल्दी भागोगे नहीं। भगवान अभी खड़े हैं तो कोई बुलाएगा तो भाग के चले जाएंगे, किसी और के हो जाएंगे। तो कावेरी ने स्पेशली प्रार्थना तपस्या की थी, तुम लेटे रहना मेरे तट पर, मैं तुम्हारे सेवा अच्छा आदि करती रहूंगी। वो मैड थी तो भगवान लेटे रहे, इसलिए लेटे हुए ताकि वो जल्दी भागेंगे नहीं। और दूसरे डिवोटी थे जिनका नाम था धर्म वर्मा, जो जिन्होंने जिनको पता चला एक बार अयोध्या गए थे, अरे रंगनाथ की सेवा हो रही है, वो यहाँ आ जाए और सारे जीव यदि उनकी सेवा दर्शन आदि कर पाए तो सर्वोत्तम होगा। तो उन्होंने बहुत तपस्या की थी और एक ही वर मांगा था कि आपकी जो सेवा है, आपका जो दर्शन है, सारे विश्व को इजीली अवेलेबल हो। मतलब आप सोचो, जो आचार्य हमें ड्यूटीज प्रदान कर रहे हैं, जो आचार्य हमें टेंपल दे रहे हैं, उनके प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए। वो सारा सैक्रिफाइस, वो सारा तपस्या कर रहे हैं, अपने जीवन में कष्ट उठा रहे हैं, ड्यूटीज आदि का दर्शन सेवा आदि हम सबको प्रदान कर रहे हैं, तो उनके प्रति हमें बहुत अधिक कृतज्ञ होना चाहिए। या किसी भी टेम्पल आदि में जाते हैं तो सबसे पहले सोचना चाहिए, हाँ, इन अर्च विग्रह के पीछे कौन से डिवोटी है, कौन से आचार्य है, तब वास्तव में वो विग्रह आपसे क्या करते हैं, हाँ, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान आते उनके साथ, विभीषण के साथ, और विभीषण उनको रखते हैं किसी कार्य के लिए जब जाते हैं, तो भगवान वहां ही रुके रहते हैं कावेरी के तट पर। उन्होंने कहा देखो, कावेरी को मनाना बहुत कठिन है, तीन हट बहुत पावरफुल होते, साधु हट्ट करे, बाल हट्ट और श्री हट्ट। तो एक लीला भगवान ने सुनाया कैसे ये सब गंगा यमुना सरस्वती और कावेरी, इनके बीच का जो घमासान युद्ध हो रहा था, और मैंने कावेरी को कहा था कि आके तुम्हारे तट पर रहूंगा, यदि अभी मैं वचन बदल दूंगा तो भगवान ने कहा मेरे लिए कठिन होगा, तुम तो मान सकते हो लेकिन कावेरी स्वीकार नहीं करेगी। तो भगवान वहां रुकते हैं और भगवान कहते कि देखो, मैं सदैव तुम्हारी ओर देखते रहूंगा। तो भगवान के विग्रह वहां है, जनरली विष्णु विग्रह पूरब की ओर देखते हैं मैक्सिमम, तो लेकिन ये जो विग्रह है वो कहां देख रहे हैं? साउथ की ओर देख रहे हैं, जहां विभीषण का राज्य है, लंका है, जहां विभीषण निवास करते हैं। तो उनको कहा कि तुम रोज संध्या के समय मेरी सेवा करने के लिए आओ। आज भी आप जाएंगे श्रीलंका में, बहुत बड़ा वो है, विभीषण का पिक्चर है, बहुत ओल्ड, जहां रोज विभीषण आके रंगनाथ की सेवा करते हैं, जिसको कहते हैं एकांत सेवा। हाँ, श्री संप्रदाय में जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, विग्रहों को कभी अकेले नहीं छोड़ा जाता, उनकी सेवा के लिए सदैव डिवोटी तत्पर रहते हैं। हाँ, जिसको एकांत सेवा कहते हैं। अल्टर क्लोज भी हो जाए तो एक डिवोटी बना रहेगा, क्या करेगा, उनको फैन करेगा। श्री संप्रदाय में भगवान की सेवा के लिए यंत्र फैन आदि अलाउड नहीं है। आचार्यगण कहते हैं ये यंत्र सारे सेवा करते रहेंगे तो ये जो श्लोक है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रोचते, इसका पालन अपने जीवन में कैसे हो सकता है? अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान के इंद्रियों की सेवा करो। हम तो कैसे अपने इंद्रियों की सेवा, इंद्रियों से भगवान की कहां सेवा करते हैं? भगवान को फैन चाहिए तो बटन दबाते हैं, एसी का या फैन का, वो बेचारे फिर हवा खाते रहते भगवान। तो कहां इंद्रिया हमारे सेवा में लगी है? हम तो इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाने के लिए उनको सुरक्षित रख रहे हैं। तो इसलिए वहां सारी सेवा डिवोटीज करते हैं, मैक्सिमम जो सर्विसेस हैं भगवान के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान रंगनाथ के रूप में वह सदैव अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करते रहते हैं और सबको आनंद प्रदान करते हैं। तो वहां जो भी डिवोटीज हैं वो सदैव इसी मूड में रहते हैं कि कैसे अधिक से अधिक भगवान को अपनी सेवा के द्वारा आनंद प्रदान करो, जिसके द्वारा अपना जो जीवन है भगवत सेवा में निछावर करने के लिए भी वहां के डिवोटीज सदैव तत्पर रहते हैं। जैसे जब केरल के एक मुस्लिम शासक थे हैदर अली, जब उन्होंने श्रीरंगम के ऊपर अपनी सेना भेजी थी तो वहां इतना अधिक धन था, ऐसे कहा जाता है कि जब इन लोगों ने लूटा हाथी और घोड़ों के ऊपर तो कई किलोमीटर हाथी और घोड़े खड़े थे, भर भर के, इतना ऑपुलेंट था। क्योंकि जो ये जो स्थान है श्रीरंगम, ये कोई टेम्पल नहीं है, जो वैकुंठ जगत कैसे है उसका एज इट इज प्रतिबिंब इस जगत में है। वैकुंठ में 7 दरवाजे होते हैं, अलग अलग चीजों की विशेषता होती है, तो उसी का रिप्लिका इस जगत में वो है, श्रीरंगम है। तो श्रीरंगम में जो श्रीरंगम स्थान है वो जगत का नहीं, वो साक्षात वैकुंठ है। और आचार्यगण कहते हैं कि उस टेम्पल के अंदर एक कोने में कोई कूड़ादान है, वो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है। जब ब्रह्मा जब दर्शन करने के लिए आए रंगनाथ का इस जगत में, तब उन्होंने देखा, अरे मैं तो जो मैनेज कर रहा हूं ना इस मंदिर के एक कोने का, धूलि का एक जो कण है ना वो मैनेज कर रहा हूं, ये ब्रह्मा सीख के चले गए। मतलब इतने बड़े ब्रह्मांड का उन्होंने सृष्टि किया, फिर भी ये ब्रह्मांड उसमें क्या है, एक छोटे से धूलि के कण से भी छोटा है। इस प्रकार से भगवान का इतना विशाल वह ऑपुलेंट है, और भगवान बहुत फास्ट, बहुत जल्दी अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। जब ये मुस्लिम शासकों ने वहां अत्याचार किया, घर आदि सारा ले लिया, और वहां विग्रह उत्सव विग्रह को फिर भक्तों ने लिया और उनको छुपाने के लिए दौड़ पड़े, तो मुस्लिम शासक उनके पीछे थे, बहुत सारे सेना सेनापति आदि भक्त श्री वैष्णव विग्रह को लेके भाग रहे थे, क्योंकि विग्रहों की रक्षा करना अपने प्राण से भी अधिक प्रिय है उनके लिए भगवान। तो जब समय आया कि अभी बहुत वो लोग नजदीक आ रहे हैं कि कहां छुपाएंगे भगवान को, तो डिवोटीज ने तुरंत ही दौड़ते दौड़ते बड़ा गड्ढा खोदा कि भगवान को हम क्या करेंगे, इसके अंदर छुपा देते हैं। तो लेकिन फिर दूसरे डिवोटी ने कहा, श्री संप्रदाय में तो ये है नहीं कि अकेले भगवान छुपेंगे, उसके साथ कौन जाना चाहिए, डिवोटी जाना चाहिए। तो इतने वो ग्रुप ऑफ डिवोटीज थे, उन्होंने कहा नहीं मैं जाता हूं। अभी हम कोई भक्त कहते कि प्रभु जी आप आगे जाइए, अब वहां क्या है, डिवोटीज के साथ आपको गड्ढे में जाना है और आपके ऊपर मिट्टी डाल के आप उसके अंदर ही रहोगे, जीवित रहोगे? नहीं, हम कहेंगे पूजा सीनियर हो, सीनियर फर्स्ट। हाँ, बड़े डिवोटीज आगे, नहीं वहां। तो हर एक डिवोटी, जैसे एक डिवोटी थे जिनका नाम अनंत पिल्लई, तो वो तो मेन प्रिस्ट थे और उन्होंने कहा मैं तो ओल्ड हो गया हूं, रंगनाथ की सेवा के अलावा क्या करूं, इस शरीर का उपयोग उनकी सेवा में होना चाहिए। तो वो उन्होंने अपना जो शरीर है उस विग्रह के साथ उन्होंने डाल दिया और भी डिवोटीज, तीन चार डिवोटीज कूद पड़े गड्ढे में, इतना जोश, और फिर उनको मिट्टी से ढक दिया गया और दूसरे डिवोटी चले गए आगे ताकि वो मुस्लिम शासकों को ना पता चले। इस प्रकार से विग्रह को जब ले जाया गया अलग अलग स्थानों में, और बाद में उनके जो उत्सव विग्रह थे वो दिल्ली के एक राजा थे उन्होंने चुरा लिए, वहां से उठा लिए किसी कारणवश, और यहाँ दिल्ली में वो मुगल के यहाँ घर में थे या महल में थे। तो जब रामानुजाचार्य को पता चला, भगवान ने कहा मेरे जो उत्सव विग्रह है वो दिल्ली में है, तो रामानुजाचार्य यहाँ आए और उनकी विद्वत्ता और उनका नॉलेज आदि से इतने प्रभावित हुए यहाँ के शासक, मुस्लिम शासक, उससे कहा मैं क्या सेवा करूं आपकी। उसने कहा कि हमारे एक विग्रह आपके पास है, उनको मैं ले जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा एक बहुत बड़ा हॉल है, उसमें बहुत सारे भारत के मंदिरों की मूर्तियां हमने डंप कर दी है, उनमें से कोई हमें ढूंढ के ले जाओ। रामानुजाचार्य गए, वो उत्सव विग्रह उनको दिखाई नहीं दिए, उन्होंने कहा इसमें तो है नहीं, लेकिन जब महल से गुजर रहे थे देखा उनकी जो बेटी है वो उस विग्रह के साथ खेल रही थी, इतने सुंदर थे, जो उनकी सेवा करती थी, उनका श्रृंगार करती थी एज अ डॉल। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि ये वो विग्रह है जिनको मैं ले जाना चाहता हूं। तो बेटी तो कहां चले गई थी, तो रामानुजाचार्य उस विग्रह को उठाया और रात्रि में दौड़ने लगे, कहा सोचा कि यदि बेटी कहे कि मुझे वही चाहिए तो पिता हमें मार के वो विग्रह ले लेगा। रामानुजाचार्य दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचे सावध, और जब उस लड़की को पता चला, वो जो युवा थी उसको बहुत अधिक उसका प्रेम था विग्रह से, तो उन्होंने कहा कि मैं भी उनको उनके सर उनको सर्च करने के लिए जाना चाहती हूँ। तो उसने भी अपना ये सारा ऐश्वर्य त्यागा और फिर वो साउथ में जाती है, और भगवान जहाँ रामानुजाचार्य ने उस विग्रह को स्थापित किया था तिरुवनंतपुरम में, वहां वो भी गई और उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हो गए। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य आदि जो वैष्णव है रंगनाथ की सेवा करते हैं। और जब एक बार मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किया था तो 1200 प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कितने वैष्णव को मारा था उन्होंने, 1200 वैष्णव को। तो जो मूल विग्रह है उनको तो उन्होंने बचाया, फिर उनका जो सेनापति था वो फिर भी ढूंढ रहा था मंदिर के अंदर, इतना विशाल है। तो ढूंढते ढूंढते एक श्री वैष्णव युवती उसे दिखाई दी जो बहुत सुंदर थी, शुभ्र वस्त्र आदि उसने धारण किए थे और रंगनाथ से बहुत अधिक वो प्रेम करती थी। तो जब उस सेनापति ने देखा उसके सौंदर्य से आकृष्ट हुआ और उस पर विश्वास करना शुरू किया, जैसे मोहिनी अवतार भगवान ने दिखाया, तो आसुरों ने भी क्या किया, विश्वास किया कि हम आपको क्या पिलाएंगे। मोहिनी ने कहा मैं आपको भी पिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी, अमृत पिलाऊंगी। तो आसुरों ने जब विश्वास किया वैसे सेनापति ने उसके ऊपर विश्वास किया, उसने कहा कि मैं दिखाती हूं कि भगवान कहाँ है, रंगनाथ के विग्रह कहाँ है। तो उसने कहा आप मेरे पीछे आओ, तो श्रीरंग में आप जाते हैं तो बहुत विशाल गोपुरम है, गोपुरम में जो गेट होता है बहुत बड़ा, टेम्पल शिखर से भी विशाल होते हैं, बहुत ही विशाल, 10-15 एशिया का सबसे बड़ा है या वर्ल्ड का। तो ये जो युवती है उस गोपुरम में चढ़ी, गोपुरम में जो भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग कह सकते हैं, तो जब वो चढ़ी सेनापति को कहा कि आप मेरे पीछे आओ मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ हो, 10 या 15 फ्लोर इतना ऊंचा वो गई और फिर वहां से उस सेनापति को दिखाया कि देखो, तो सामने जहां भगवान रंगनाथ होते हैं उनके ऊपर वासुदेव कृष्ण का फेस है ऊपर शिखर के ऊपर गोल्डन। तो वो दिखाया कहा ये मेरे प्राणनाथ है, ये है वो वासुदेव कृष्ण। कहा कि आप देखो जरा आगे जाकर देखो, वो बेचारा आगे गए, माता जी ने धक्का दे दिया उसको, कितने फ्लोर, 15 फ्लोर से नीचे गिर गया और मर गया। जब वो सेनापति मरा, सारे मुस्लिम शासक डर के भाग गए वहां से। फिर उस युवती ने सोचा कि मैंने अपराध किया है, मंदिर के अंदर एक व्यक्ति की मैंने हत्या की है, तो मैं भी अपने शरीर का त्याग करना चाहती हूँ। तो उसने भी इतने ऊंचे से छलांग लगा दी, लेकिन भगवान रंगनाथ आ गए, उसको पकड़ लिया भगवान के नीचे और उसको एक खरोच भी दे आई। तो भगवान ने कहा, उस युवती का नाम भी भूल गया, कि आप मुझे बहुत अधिक प्रिय हो, तुम इस जगत में रहते हुए भी दिन रात मेरी सेवा करो, आपकी सेवा मुझे बहुत अधिक पसंद है। तो उसने कहा, मैं आपकी सदैव सेवा करना चाहती हूँ, और मैं जब शरीर त्यागूंगी तो उसमें से फ्लेम निकल आए, और उस फ्लेम के द्वारा आपके किचन में क्या हो, रसोई कुक हो। तब से उस फ्लेम अभी तक जो रंगनाथ का किचन है वह जलती है, जिसके द्वारा रंगनाथ की सेवा या कुकिंग आदि होता है। तो वह जो भी गोपुरम है वो बहुत कलरफुल है, लेकिन जिसके ऊपर से इस माताजी ने उनको गिरा दिया था उसको व्हाइट कर दिया है, कि सबको याद रहे उसका जो डेडिकेशन है, उसका जो समर्पण है। जो भी व्यक्ति श्रीरंगम में आए तो उसका स्मरण करें, उसकी जो समर्पण की भावना है। तो भगवान के विग्रह को जब चुरा के ले गए थे, तो फिर बाद में यहाँ पुजारी ने सोचा चलो और एक विग्रह इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इन्होंने और एक उत्सव विग्रह इंस्टॉल किया, स्थापित किया। तो फिर जो दूसरे विग्रह दूर थे, तिरुपति में रखा गया था उनको सेफ, तो उनको भी लाया गया। अभी दो रंगनाथ हो गए। सबने पूछा ओरिजिनल कौन सा है, 72 साल हो गए थे, और उस समय का कोई व्यक्ति बचा नहीं था, सब परेशान थे कि ओरिजिनल कौन से विग्रह है। तो एक वहां केवल दो व्यक्ति जीवित थे, बहुत ही बूढ़े हो गए थे, एक धोबी थे जिनके पास आग नहीं थी। सारे श्री वैष्णव ने कहा कि आप बताओ कि ओरिजिनल विग्रह कौन से है। तो उनके पास गए, उन्होंने कहा मैं तो शुद्र आदम हूं, मैं एक धोबी हूं, मेरी आंखें भी चली गई है, मैं कैसे पहचानूंगा। लेकिन कहा कि एक चीज से मैं बता सकता हूं, मैं जब युवा था तो मैं रंगनाथ के कपड़े धोया करता था, और उनके वस्त्रों का एक अमेजिंग सुगंध है, जिस सुगंध को मैं वस्त्र धोने के बाद सूंघता था, और उस वस्त्र को निचोड़ के जो पानी है चरणामृत के रूप में पी लेता था, उसका भी एक विशेष स्वाद था। तो कहा कि वो दोनों जो विग्रह है उनके मुझे वस्त्र दे दो। तो फिर उनको वस्त्र दिए गए, वो धोबी आंखें नहीं थी, बहुत बूढ़ा हो गया था, लेकिन जब उन्होंने धोए, पहले विग्रह के धोए तो कहा नहीं, दूसरे के देख कहा यह है रंगनाथ, ये सेम स्वाद है, सेम सुगंध आदि है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सेवा के द्वारा भगवान रिवील हो जाते हैं। सेवन के जीवादो स्वयं स्फुरति आधा, कि ये सेवा की भावना एक धोबी के अंदर भी थी, जिसके द्वारा भगवान उनके लिए रिवील होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत कुछ वर्णन रामानुजाचार्य और जो आचार्य गण है वो रंगनाथ के बारे में करते हैं। और रंगनाथ भी उनके एक डिवोटी थे जिनका नाम था कुरेश, रामानुजाचार्य के शिष्य थे, और उनको वहां के जो राजा थे उन्होंने उनकी आंखें निकाल दी थी, जिनके द्वारा बहुत अधिक कष्ट में थे श्रीरंगम में। और उस समय कंटिन्यूअसली कई हफ्ते बारिश हो रही थी तेज। तो ये जो कुरेश और उनकी पत्नी थी अंडाल, ये दोनों बहुत रिच थे, लेकिन उन्होंने सारा धन आदि त्याग कर श्रीरंगम में निवास कर रहे थे। फिर उनके पास 3 दिन के लिए कुछ खाने के लिए नहीं था, पत्नी गर्भवती थी, और एक कुरेश भगवान नाम उच्चारण के अलावा कुछ नहीं करना चाह रहे थे। तो जब मंदिर के नजदीक ही उनका घर था, मंदिर के अल्टर में जब भोग की घंटी बजती थी तो कहां सुनाई देता था, घर में सुनाई देता था। तो 3 दिन से भूखे थे, तो जो माता जी सुनती थी कि रंगनाथ देखो तुम तो ऑन टाइम प्रसाद लेते रहते हो, भोगा खाते रहते हो, दिन में 8 बार या जितने मर्जी बार, कोई मिस नहीं होता है, जैसे घंटे बजती थी उनको ये स्मरण आता था। और कहते देखो तुम्हारा जो भक्त है 3 दिन से भूखा है, तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं है, तो रंगनाथ को बहुत चिंता हो गई, उन्होंने पुजारी को बुलाया, इधर आओ, वहां मेरा भक्त कुरेश, रामानुजाचार्य के प्रिय शिष्य थे, कुरेश वहां भूखा है, आज जो राजभोग का पूरा थाल जो निकलेगा वो लेके उनके घर पहुंच जाना। तो पुजारी पूरे बैंड बजाकर ढोल मृदंगा बजाते हुए पहुंच गए कुरेश के घर। तो कुरेश ने जब देखा कि पुजारी जाए है राजभोग का बड़ा थाली प्रसाद लेकर, कुरेश ने अपनी पत्नी को बुलाया, तुमने मांगा तो नहीं भगवान रंगनाथ से? उन्होंने कहा कहते मैं नहीं खा सकता, तुम ही खा लो, हाँ तुमने रंगनाथ को अपनी सेवा में यूज किया है, ये उचित नहीं है। फिर उसने भी दो ग्रेन खाए उसमें से, उससे उनको दो पुत्रों की प्राप्ति हुई, एक थे व्यास भट्ट और दूसरे थे पराशर भट्ट। जब वो गर्भवती थी रामानुजाचार्य के पति को पूछते थे आपकी पत्नी कब किसको जन्म देगी, जल्दी बताओ, अभी ये सन्यासी है, इनको क्या लेना देना, इतना बार बार पूछते रहते थे रामानुजाचार्य। क्यों? क्योंकि उनको अपने गुरु को दिया हुआ एक वचन उसकी पूर्ति करनी थी कि एक मैं ऐसा शिष्य बनाऊंगा जिसका नाम मैं पराशर रखूंगा। तो इनके जो पुत्र हुए उनका नाम उन्होंने पराशर रखा था। इस प्रकार से रंगनाथ जिनको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, आप श्रीरंगम जाएंगे तो भगवान म्यूजिक सुनने में मैड रहते हैं। जब उनका मंगल आरती होता है तो सितार वादक बड़े बड़े क्या कहते वीणा आते हैं लंबे लंबे, और श्री वैष्णव धोती डालकर मंगल आरती से पहले उनको सितार और म्यूजिक बजाकर उठाते हैं, और जब उनको सोना भी होता है तो भी म्यूजिक बजाया जाता है। और भगवान को कथा सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। उनके डिवोटी थे जो रोज उनके टेम्पल हॉल के बाहर एक मंडपम था जिसमें कथा करते थे, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सोचा अरे मैं हमेशा लेटा रहता हूँ, वह इतना आनंद उठा रहे मेरे बारे में सुनकर, मैं तो जाओ कि मेरे बारे सुनकर इतना आनंद आ रहा है, मैं जाकर सुनूं अपने बारे में। तो वहां एक लाइट्स तो नहीं हुआ करती थी उस समय, मशाल लेकर एक व्यक्ति की सेवा होती थी, आल्टर के पास मशाल लेके खड़ा रहना, उसको बुलाया इधर आओ, हेड पुजारी को बुलाओ और बोलो कि मुझे ना कथा सुनने के लिए जाना है वहां। भगवान कहते ना यत्र गायति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त मेरी कथा करते हैं नाम गान करते हैं मैं उसको सुनने के लिए तत्पर होता हूं। तो फिर भगवान जाते हैं बहुत सारे ढोल और मृदंग आदि बजाकर, अभी तो एक ही ढोल बजाते हैं, पहले तो हजारों ढोल बजते थे, कलयुग में सब रिड्यूस होते जा रहा है। तो गए पुजारी करताल बज रहे, मृदंग बज रहे, ढोल बज रहे हैं और प्रवचन हो रहा है, बहुत लोग बहुत अटेंटिवली रंगनाथ के बारे में सुन रहे हैं। ये गए ढोल बजाना सब शुरू हो गया, सब लोग डिस्टर्ब हो गए, कथा में बाधा हो गई। तो उनमें से एक बहुत चतुर भक्त था, अटेंटिव श्रोता, वो खड़ा हो गया, खड़ा होकर पूछे साथ में खड़ा हुआ, कहा देखो देखो इनको समझ में नहीं आता कि ये अपनी कथा में आकर डिस्टर्ब करते हैं, कोई एटिकेट्स है कि नहीं इनके पास। तो भगवान रंगनाथ को इतना शॉक लगा, उन्होंने कान पकड़ा, किसका, पुजारी का, वापस ले चलो, कहा कि आज के बाद फिर से मुझे बाहर मत निकालना, कथा में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान वापस जाते हैं और फिर से अपनी सेवा में मग्न हो जाते हैं। तो ऐसे रंगनाथ की हजारों लीलाएं हैं। तो ऐसे स्थान में श्री चैतन्य महाप्रभु गए। चैतन्य महाप्रभु तीन स्थानों में सर्वाधिक रहे, सबसे पहले नवद्वीप में सबसे अधिक समय बिताया, फिर जगन्नाथपुरी में बिताया, और तीसरा स्थान जहां महाप्रभु सबसे अधिक रहे वो था रंगनाथ, चार महीने के लिए रहे। रोज रंगनाथ का दर्शन करना, उनकी स्तुति करना, कावेरी में स्नान करना, उनका गुणगान गाना, और वाहे चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण को भी मिले थे जो क्या पढ़ते थे भगवद गीता। इस प्रकार से रंगनाथ श्रीरंग बहुत विशेष स्थान है जहां चैतन्य महाप्रभु गए, और वहां जाकर उन्होंने प्रेम में विवल होकर रंगनाथ का दर्शन किया और नाचने लगे और गाने लगे। इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज इस विशेष कार्य का वर्णन करते हैं जिसका हमें स्मरण करना चाहिए और रंगनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत के श्रील प्रभु